भाई ओबेनो नमो बुधाय जय भीम. I tried to learn how to say brothers and sisters in Kannada, but my head is too thick.
तो मैंने कन्नड़ा में भाइयों बहनों कैसा बोलना है सीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी जो खोपड़ी है बहुत जाड़ी है.
Satyam tried to teach me, but it's gone already.
सत्यम ने सिखाने की मुझे कोशिश की, लेकिन वो दिमाग से सटक गया.
So I'm very sorry not to speak your language.
तो आपकी भाषा में बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खेद है.
I saw Bante did so well in his speech.
बहुत अच्छी कन्नड़ा में बात की.
So I'm sorry that I can't follow his example in this way.
अभी उनका उदाहरण मैं अपने जीवन में नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए दुख हो रहा है.
But I'm very happy indeed that we are here. Starting our Dhamma Kranti retreat in Gulbarga.
तो मुझे बहुत खुशी है हम यहाँ पर गुलबर्गा में हमारे इस धम्म क्रांति शिविर की शुरुआत कर रहे हैं.
These Dhamma Kranti retreats are just what they say.
अभी धम्म क्रांति शिविर जो नाम है नाम के ही जैसा है.
We're trying to make a revolution.
हम क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं.
But we're trying to make that revolution on the basis of the Buddha Dhamma.
और ये क्रांति जो है हम बुद्ध धम्म के आधार पर लाने की कोशिश कर रहे हैं.
And yes, it's so good that we're doing our Dhamma Kranti retreat here in Karnataka.
और यहाँ कर्नाटक पर एक बहुत अच्छी बात है कि हम ये धम्म क्रांति शिविर कर रहे हैं.
And especially in this beautiful Vihara.
और खास करके ये बहुत ही अतिशय सुंदर इस विहार में.
And I want to communicate my very hearty thanks to Bante and all who are involved in allowing us to be here.
तो मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ बंते जी को और इसमें जो भी सहभागी है उन सभी को.
They've made us very welcome indeed.
उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है.
We felt completely at home. We felt with our brothers and sisters.
तो हमें बहुत ऐसा लगा कि हम अपने घर आए हैं, हम अपने भाई बहनों के बीच में आए हैं ऐसा लगा.
I personally regard the Siddharth Vihar as a very important development.
तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये सिद्धार्थ विहार जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसा मानता हूँ.
Many of my friends coming from Maharashtra and other places have said how inspired they've been just to see this vihara.
तो मेरे बहुत सारे महाराष्ट्र के मित्र हैं, वो कहते हैं कि इस विहार में आकर ही उनको कितनी प्रेरणा मिली है.
Because it's a living symbol of the revival of Buddhism in Karnataka.
क्योंकि कर्नाटक में बुद्ध धम्म के पुनर्जीवन का ये एक जिंदा ऐसा उदाहरण है.
Karnataka used to be an important center of the Buddha Dhamma.
कर्नाटक बौद्ध धम्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.
If you dig beneath the soil anywhere, you will find Buddhist remains.
अगर आप इस कर्नाटक की मिट्टी खोदोगे कहीं पर भी आपको बुद्ध धम्म के अवशेष मिलेंगे.
I heard just yesterday that the fourth big monastery of ancient India was here just 40 miles away.
मैंने कल बात सुनी है कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर भारत की चौथे नंबर की सबसे बड़े बौद्ध विद्यापीठ यहाँ पर था.
नागवी इसे को नागवी. हाँ
तो नागवी विद्यापीठ.
It's like Nalanda, Nagarjunakonda, Vikramashila.
नालंदा नागार्जुनकोंडा विक्रमशिला ऐसे विद्यापीठों में से हुए हैं.
This was a Buddhist land right here.
तो ये जो भूमि है ये बौद्ध भूमि है.
And this vihara shows that Buddhism is coming back to Karnataka.
और ये विहार हमें बताता है कि कर्नाटक में बुद्ध धम्म वापस आ रहा है.
So I'm very, very happy indeed to have been welcomed here.
और इसलिए यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी होती है.
And I hope that we can contribute to your work in creating the Dhamma Kranti here.
और यहाँ धम्म क्रांति करके मुझे आशा है कि आपके इस कार्य में हम थोड़ा सा सहभाग देंगे.
We want to work with all Buddhists of goodwill.
जो भी अच्छी भावना रख के काम करने वाले हैं उन सभी बौद्धों के साथ हम काम करना चाहते
हैं. We have our different traditions, we have our different ways of doing things.
हमारी परंपरा अलग है, काम करने का ढंग अलग है.
But we're all trying to bring the Buddha Dhamma back to India.
लेकिन हम सभी लोग भारत में बुद्ध धम्म वापस लाने का कार्य कर रहे हैं.
What we have in common is much greater than what is different.
हमारे एकता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जो भेद है उससे भी ज्यादा.
We're brothers and sisters in the Buddha Dhamma.
हम बुद्ध धम्म के भाई और बहन हैं.
And we've been made to feel that very much since we arrived here.
और जहां जब से हम यहां पर आए हुए हैं इसी भावना को हमें एक तरह से अनुभव हुआ है.
So this is a wonderful occasion for us.
और इसलिए हमारे लिए बहुत ही सुंदर ऐसा प्रसंग है.
We hope that we'll be able to really experience, to taste the Dhamma Kranti here.
और मुझे आशा है कि एक सही में धम्म क्रांति का स्वाद है यहाँ पर हम ले सकेंगे.
in such a wonderful place. I remember when I arrived just two nights ago, seeing the stupa, the vihara, glistening in the moonlight.
तो मैं दो रात पहले यहाँ पर जब आया तो चंद्र के प्रकाश में ये जो स्तूप का जो डोम है वो चमक रहा
and it seemed to draw me to it.
ऐसे लग रहा था कि वो मुझे अपने तरफ खींच रहा है.
So I'm very happy indeed to be here.
और इसलिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई.
And I hope that many more people will come and experience this wonderful place.
और मुझे आशा है कि बहुत से लोग आएंगे और इस सुंदर ऐसी जगह का अनुभव लेंगे.
Just walking around, there's so many reminders of India when it was a Buddhist country.
तो जब आप बिहार के चारों तरफ चलोगे तो जब भारत बौद्धमय था उस वक्त के बहुत सारे याद देने वाले चिन्ह आपको दिखाई देंगे.
I was particularly pleased to see those four Ashok stump.
चार अशोक स्तंभ मैंने जब देखे मैं बहुत खुश हुआ.
Because they're the symbol of the triumph of the Dhamma.
क्योंकि ये हमारे धम्म के विजय का प्रतीक है.
Because Samrat Ashok said that he would conquer not through war but through the Dhamma.
क्योंकि सम्राट अशोक ने कहा था कि वो दुनिया को जीतेंगे युद्ध से नहीं बल्कि धम्म से.
So when those pillars are erected, it means that we're conquering again through the Dhamma.
और जब ये चार स्तंभ वहां पर खड़े हैं इसका अर्थ यह है कि हम धम्म से फिर से जीतने वाले हैं.
So there are so many other symbols around.
और इस तरह से बहुत सारे अन्य चिन्ह भी आप इर्द गिर्द हैं.
But something really touched my heart.
और एक बात मेरे हृदय को छू गई.
When you come to the entrance way, you see Baba Saheb.
आप जब प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं आपको बाबा साहब दिखते हैं.
You see Baba Saheb with a big stick.
बाबा साहब बड़ी लकड़ी लेकर खड़े हैं.
You see Baba Saheb walking.
आप देख रहे हैं बाबा साहब चल रहे हैं.
And you see many people behind Baba Saheb following him.
और बाबा साहब के पीछे बहुत सारे लोग हैं चल रहे हैं.
So what is Baba Saheb doing?
बाबा साहब क्या कर रहे हैं?
All these people, they represent the people of India.
और ये बाबा साहब के पीछे जो लोग हैं वो भारत की जनता का प्रतीक है.
There are just maybe 8 or 9 of them there.
वहाँ 8 या 9 ऐसे लोग हैं.
But they represent the crores of people of India.
लेकिन वे भारत के करोड़ों लोगों का प्रतीक है.
And they're following Baba Saheb to the Vihara.
और बाबा साहब को बाबा साहब के पीछे ये पूरे भारत के लोग बिहार की तरफ जा रहे हैं.
And they're leading towards, they're following Baba Saheb to the Buddha.
और बाबा साहब के पीछे पीछे वे बुद्ध की तरफ जा रहे हैं.
So it's a symbol of the Dhamma Kranti.
और इसलिए ये धम्म क्रांति का ये चिन्ह है.
Baba Saheb leading India to the Buddha.
बाबा साहब भारत को बुद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं.
That's a wonderful symbol and very beautifully executed.
और ये बहुत ही सुंदर ऐसा प्रतीक जो है बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बनाया हुआ है.
It's a symbol of the Dhamma Kranti.
और ये धम्म क्रांति का प्रतीक है.
So yes, we know that Baba Saheb converted to the Buddha Dhamma in 1956.
आप जानते हैं कि 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म में धर्मांतर किया.
We know that very, very sadly, just 7 weeks later, he was no more.
अब हम जानते हैं कि बहुत दुख की बात है कि 7 सप्ताह बाद ही बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे.
बाबा साहब had done so much in his life.
बाबा साहब ने उनके जीवन में बहुत कुछ किया है.
He was a man who lived 20 lives in just one life.
वो बाबा साहब ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक जिंदगी में 20 जिंदगियां जी.
He did so much.
उन्होंने इतना कार्य किया.
But for him, the greatest act was his coming to the Buddha Dhamma.
लेकिन बाबा साहब के लिए सर्वश्रेष्ठ उनका कार्य था बुद्ध के तरफ जाना.
It was his last and greatest act.
वे उनकी आखिरी और सबसे महान ऐसी कृति थी.
That's what he himself said. I'm not making this up.
अब मैं ये अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब खुद कहते हैं.
At the end of his life, he said, "I wish I'd done this earlier."
बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी में कहते हैं कि अच्छा होता मैं ये पहले ही कर सका हूँ.
I wish I could have devoted more of my life to the Buddha Dhamma.
वे कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि बुद्ध धम्म के लिए अपने जीवन को मैं और ज्यादा समर्पित कर सकूं.
He saw that it was what India really needed.
बाबा साहब ने ये देखा था कि भारत को इसी की जरूरत है.
So on October the 14th, 1956, Baba Saheb performed his last and greatest act.
और इसलिए 1956 में अक्टूबर में बाबा साहब ने उनकी आखिरी और सबसे बड़ी कृति जो है वहां पर की.
He went for refuge to the Buddha Dhamma and Sangha.
वे बुद्ध धम्म और संघ को शरण गए.
And lakhs of his followers came with him.
और उनके लाखों अनुयायी उनके पीछे आए.
So why did he do that?
तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया?
Why did he think that was the most important thing?
अब वो ये क्यों सोचते हैं कि यही उनके सबसे बड़ी महत्व की बात है?
Well, he did it because he believed it was the best way to bring India to an ideal society.
क्योंकि बाबा साहब के विश्वास था कि भारत के समाज को आदर्श समाज बनने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है.
बाबा साहब wanted a new India.
बाबा साहब नया भारत चाहते थे.
He wanted a new world, not just in India, but all over the world.
केवल भारत ही नहीं, बाबा साहब पूरी दुनिया को नया देखना चाहते.
He wanted a world of liberty, equality and fraternity.
बाबा साहब स्वतंत्र, समता और बंधुता की दुनिया चाहते थे.
He wanted people to be free.
वे चाहते थे कि लोग स्वतंत्र रहें.
He wanted them to be able to live where they wanted to live.
उनकी जहां रहने की इच्छा हो वहां रहे, ऐसा वो चाहते थे.
He wanted them to work what they wanted to work at.
जो काम करना चाहे वो काम करें, ये उनकी इच्छा थी.
He wanted them to study what they wanted.
जो अभ्यास करना है वो अभ्यास करें.
He wanted them to marry who they wanted.
जिसके साथ शादी करने की इच्छा हो उसके साथ शादी करें.
He wanted them to live the life that suited them best.
उनके स्वयं के लिए जो अच्छा जीवन है वो जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र रहे वो चाहते.
He wanted people to be free.
वे चाहते थे कि सभी लोग मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे.
He wanted people to be equal.
वे चाहते थे कि सभी लोग समान रहे.
So people were just on the same level.
ताकि सभी लोग एक ही स्तर पर रहे.
When they were born, they were just born as a human being.
जब किसी का जन्म हुआ है, एक मनुष्य करके ही जन्म हुआ है.
When they were born, they were just a citizen of India.
जब उनका जन्म हुआ, वो भारत के नागरिक करके जन्म हुआ है.
When they were born, they were just a citizen of the world.
वे जब जन्म हुआ, तो ये लोग दुनिया के नागरिक थे.
He didn't want birth to determine where people stood in society.
वे नहीं चाहते थे कि किसी के जन्म से समाज के उसका जो स्तर है वो निश्चित हो.
They wanted it to be worth that determined where they stood.
वे चाहते थे कि इंसान की जो योग्यता है उससे उसका स्तर बने.
So Baba Sahib wanted equality for India.
और इसलिए बाबा साहब भारत के लिए समानता चाहते थे.
Baba Sahib wanted fraternity for India.
बाबा साहब भारत के लिए बंधुत्व चाहते थे.
So when one Indian met another Indian, they just saw a brother or a sister.
जब एक भारतीय दूसरे भारतीय को मिले तो उसे अपने भाई या बहन करके देखे.
Where one citizen felt love, felt respect for another.
एक नागरिक करके दूसरे के लिए एक मैत्री और प्रेम महसूस करे.
This is the India that Baba Sahib wanted.
ऐसा भारत बाबा साहब चाहते थे.
But brothers and sisters, it's not like that.
लेकिन भाई और बहनों, भारत आज ऐसा नहीं है.
It wasn't like that at Baba Sahib's time.
बाबा साहब के समय भी भारत ऐसा नहीं था.
It's still not like that.
और अभी भी वो ऐसा नहीं है.
People are not free.
लोग स्वतंत्र नहीं है.
They can't live where they want.
जहां चाहे वहां वो नहीं रह सकते.
Many people can't work at what they want to work at.
जो काम करना चाहते हैं वो काम सभी लोग नहीं कर सकते.
Many people are still cut off from education.
बहुत सारे लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती.
Many people cannot walk freely through their own village.
अपने गांव में भी बहुत सारे लोग मुक्त रूप से नहीं चल सकते.
People are not equal.
लोग समान नहीं है.
One Indian is up there, another Indian is down there.
एक भारतीय कहीं ऊंचाई पर है तो दूसरा भारतीय कहीं नीचे है.
And there's not fraternity.
और उनके बीच में बंधुत्व नहीं है.
When one Indian meets another, they see high, they see low.
जब एक भारतीय दूसरे भारतीय को मिलता है तो देखता है कि ये ऊंचा है या नीचा है.
They don't see brother, they don't see sister.
वे भाई नहीं देखते या बहन नहीं देखते.
So why? Why is this the case?
तो ऐसा क्यों है?
There's just one word that sums it up.
अभी एक शब्द ही इस सब का जवाब देता है.
जाति. That's the word.
ये शब्द है जाति.
It's jati that stands in the way of liberty, equality and fraternity.
तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के बीच में आता है वह है जाति.
From right early on in his life, Baba Sahib dedicated himself to getting free from caste.
और अपने जीवन के शुरुआत से ही इस जाति को नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन को समर्पित किया.
In order to create liberty, equality and fraternity, he dedicated himself to destroying caste.
तो भारत को अगर समता, स्वतंत्रता और बंधुता चाहिए तो इस जाति को नष्ट करने के लिए समर्पित करना चाहिए.
From his very poor and very oppressed background, he rose up to be the best educated man in India.
उनके स्वयं के बहुत ही गरीब और बहुत ही शोषित ऐसे जगह से वो इतने ऊंचाई पर उन्होंने अपने आप को उठाया कि भारत के वो महान इंसान बने.
But he didn't use his position just to make himself comfortable.
लेकिन अपनी इस उपलब्धि को अपने सुख के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया.
He used his position, his education, to to help the downtrodden of India.
और अपने स्थिति का उपयोग उन्होंने भारत के पददरितों के विकास के लिए किया.
And he struggled all his life.
अपने पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया.
He had such a difficult life.
और उनका जीवन बहुत ही मुश्किल था.
When my teacher, Urgyen Sangharakshita met him, he said something to him.
जब मेरे गुरुजी उर्गेन संगरक्षित उनको मिले, तो बाबा साहब ने एक बात उनको बताई थी.
Our teacher, Urgyen Sangharakshita, said, "What future does Buddhism have in India?"
तो मेरे गुरु संगरक्षित जी ने उनको पूछा था कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या भविष्य है.
बाबा साहब said, "I don't have a future in India."
बाबा साहब ने कहा था कि मुझे ही भारत में भविष्य नहीं है.
Everybody's against me.
सब लोग मेरे खिलाफ है.
But बाबा साहब never turned back.
लेकिन बाबा साहब कभी पीछे नहीं मुड़े.
Even though everybody was against him, he never turned back.
जबकि सब लोग उनके पीछे खिलाफ थे, बाबा साहब कभी भी पीछे नहीं लौटे.
He struggled in so many ways.
कई तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया.
We know all about his labor agitation.
आपको मालूम है उन्होंने मजदूरों के लिए जो संघर्ष किया.
His work for the mill workers of Mumbai.
मुंबई के मिल कामगारों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, ये आप जानते हैं.
We know about his educational work.
बाबा साहब के शैक्षणिक कार्य को आप जानते हैं.
He started the People's Education Society, Siddharth College, and so many other things.
उन्होंने People Education Society शुरू की, सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया, इस तरह से बहुत सारा शैक्षणिक कार्य किया.
He tried to educate people, he tried to uplift people through newspapers.
हमने वर्तमान पत्र के माध्यम से उन्होंने लोगों का उत्थान करने की कोशिश की.
मुकनायक and so on.
मुकनायक वगैरह उन्होंने शुरू किए.
He started political parties, he gained political power.
और उन्होंने राजकीय पार्टी शुरू की, उन्होंने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की.
He did legal work.
उन्होंने कानूनी कार्य किया.
Eventually he joined government.
और अंत में वो सरकार में दाखिल हुए.
I thought it was very significant. He was the labor member for the Viceroy's Council.
अब ये बहुत ही खास बात है कि बाबा साहब वाइसराय के काउंसिल में वहाँ के मजदूर मंत्री थे.
And Kargaji, who is the founder of this place, is now the labor minister.
अभी खरगे जी जो यहाँ के संस्थापक है, वो अभी कामगार मंत्री.
So he's inherited Baba Sahib's place.
तो बाबा साहब की जगह अभी खरगे जी ने ली हुई है.
And Baba Sahib did so much work.
और बाबा साहब ने बहुत सा कार्य किया.
I felt when I was talking to Kargaji that I was in touch with history.
तो जब मैं खरगे जी से बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं इतिहास के संपर्क में आ गया.
I was in touch with Baba Sahib because he inherited his seat.
जैसे कि बाबा साहब की जगह उन्होंने ली है, तो उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, ऐसे मुझे लगा.
Yes, and Baba Sahib did so much for labor legislation.
बाबा साहब ने काम मजदूरों का कानून बनाने के लिए बहुत कुछ किया.
Well, he was labor member. He formed the foundation for labor law in this country.
इस देश का जो मजदूर का कानून जो है, उस वक्त बाबा साहब जब सदस्य थे, तब उसकी नींव जो है बाबा साहब ने रखी.
I'm sure Kargaji is extending that even further.
और मुझे आशा है कि खरगे जी इसी कानून को और आगे मजबूत बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे.
And of course, he had the wonderful opportunity of writing the constitution of India.
और बाबा साहब पे बहुत अच्छा मौका मिला भारत की संविधान को लिखने का.
And he gave India a wonderful constitution.
और उन्होंने भारत को बहुत ही सुंदर ऐसा संविधान दिया.
Since 1950, when the constitution was instituted, India has been a democracy of amazing stability.
और 1950 से जब से इस संविधान को भारत ने स्वीकार किया, तब से सबसे बड़ा एक लोकशाही राष्ट्र भारत रहा है.
Just a few days ago, we celebrated the 60th anniversary of him giving that constitution to the Constituent Assembly.
तो बाबा साहब ने जिस दिन ये समर्पित किया संविधान, उसके 60वीं वर्षगांठ अभी हमने मनाई थी.
And just in a few days, in January, we'll be celebrating the institution of that constitution.
और 26 जनवरी को इस संविधान को लागू करने का उत्सव हम मनाएंगे.
And it's a remarkable work.
और ये बहुत ही खास ऐसा कार्य है.
I have a friend from South Africa.
साउथ अफ्रीका के मेरे एक मित्र हैं.
And he's a constitutional lawyer.
और वे संवैधानिक वकील हैं.
And he told me that when they were forming the constitution of India, of South Africa, they took greatest inspiration from Baba Saheb's work.
तो उस मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो साउथ अफ्रीका का संविधान लिख रहे थे तो सबसे ज्यादा प्रेरणा उन्होंने भारत के संविधान से ली है.
They looked at constitutions from all over.
उन्होंने दुनिया भर की संविधान को देखा.
But they found in the Indian constitution the best help for them.
लेकिन भारतीय संविधान में ही उन्हें सबसे ज्यादा मदद हुई.
So Baba Saheb achieved so much.
तो बाबा साहब ने बहुत कुछ प्राप्त किया है.
He did a huge work.
उन्होंने बहुत महान ऐसा कार्य किया.
And he really did make big changes to India.
और भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़े बदलाव लाए हैं.
Yes, this is the biggest democracy in the world.
अभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है.
And it's a successful democracy because of Baba Saheb's constitution.
और ये लोकशाही सफल है क्योंकि बाबा साहब का संविधान उसके पीछे.
All the benefits that you have received.
आपको जो कुछ भी लाभ अभी हो रहे हैं.
Those come from Baba Saheb's work.
और ये सब लाभ जो है बाबा साहब के कार्य से आ रहे हैं.
It's because of Baba Saheb that you've benefited as much as you have.
और बाबा साहब की इस कार्य की वजह से जितना भी लाभ आपको हो रहा है वो आप देख रहे हैं.
You truly are his sons and daughters.
तो इसलिए सही मायने में आप उनके पुत्र और पुत्री हैं.
I too am a son of Baba Saheb.
मैं भी बाबा साहब का पुत्र हूँ.
I come from England.
मैं इंग्लैंड से आया हूँ.
We don't have caste.
वहाँ जाति नहीं है.
Actually, we do have caste because we have Indians in England.
अभी इंग्लैंड में भी जाति है क्योंकि भारत के लोग इंग्लैंड में आए हुए हैं.
Because I'm afraid that Indians bring caste with them to England even.
क्योंकि अभी ये भी बात खास है कि भारत के लोग इंडिया इंग्लैंड में आते तो वहाँ भी जाति लेकर आते.
But we don't have it. We from England, the native English, we don't have it.
लेकिन इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग हैं उनकी कोई जाति नहीं.
But nonetheless, I consider myself a son of Baba Saheb.
फिर भी मैं अपने आप को बाबा साहब का पुत्र समझता हूँ.
Because Baba Saheb has taught the world how to bring liberty, equality and fraternity.
क्योंकि बाबा साहब ने दुनिया को सिखाया है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता कैसी लानी चाहिए.
So much work Baba Saheb did.
और इसलिए बाबा साहब ने बहुत कार्य किया.
So many of you could not be here if it wasn't for Baba Saheb.
अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं होते.
But
लेकिन
it wasn't enough.
इतना ही पर्याप्त नहीं था.
Baba Saheb knew it was not enough.
Baba Saheb ये जानते थे कि इतना पर्याप्त नहीं है.
After all that work, caste remains.
इतना सारा काम करने के बावजूद भी जाति अभी तक जिंदा है.
After that wonderful constitution, caste remains.
इतने बड़ी अच्छी संविधान होने के बाद भी जाति है.
The Constitution in its preamble says that the Republic is founded on the principles liberty, equality, fraternity and justice.
अभी जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें लिखा है कि ये जो राष्ट्र है ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है.
This was Baba Saheb's proud achievement.
और ये बाबा साहब की सबसे अभिमान करने लायक प्राप्ति है.
It was his proud achievement to put those words at the start of the Constitution.
बाबा साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संविधान के शुरुआत में ही ये शब्द उन्होंने डाले हैं.
But brothers and sisters, they are still not universally recognized in India.
लेकिन भाई और बहनों आज भी इन तत्वों को भारत में पूरी तरह से माना नहीं जाता.
There still isn't liberty for everybody.
हर एक के लिए स्वतंत्रता नहीं है.
People are not equal.
लोग समान नहीं हैं.
There isn't fraternity between people.
लोगों के बीच में बंधुत्व नहीं है.
And still justice needs to be achieved.
और न्याय जो है और मिलना बाकी है.
So, just a constitution is a magnificent achievement.
और इसलिए संविधान ही एक बहुत बड़ी प्राप्ति है.
But it's not enough.
लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है.
You do not get rid of caste just with a constitution.
केवल संविधान से जाति समाप्त नहीं होगी.
This was Baba Saheb's brilliant mind.
और ये बाबा साहब का बहुत ही तेज दिमाग था.
He knew that this was not enough.
बाबा साहब ये जानते थे कि इतना पर्याप्त नहीं है.
It was very, very important.
ये बहुत ही महत्व की बात है.
It was crucial to the development of India.
भारत के विकास के लिए वो जो संविधान है सबसे महत्वपूर्ण है.
But caste does not go just because of a constitution.
लेकिन केवल संविधान से जाति नहीं जाएगी.
So this was Baba Saheb's biggest, deepest problem.
और ये बाबा साहब के सामने बहुत बड़ा और गहरी समस्या थी.
How do you get caste out of India?
भारत से जाति को आप कैसे भगाएंगे?
If a constitution won't do it, how do you get it out?
तो अगर संविधान भी ये नहीं कर सकता है तो इसको निकालेंगे कैसे?
If you can't get rid of it through agitation and social work and so on, how do you get rid of caste?
संघर्ष करके सामाजिक कार्य करके इसको अगर नष्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको कैसे नष्ट करेंगे?
Well, Baba Sahib is a brilliant man.
लेकिन बाबा साहब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे.
He was the best doctor.
वो बहुत ही सबसे अच्छे डॉक्टर थे.
Well, you know what happens when you go to many doctors.
आप बहुत सारे डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, आपको मालूम है क्या होता है?
You say, oh, doctor, I have a headache.
तो डॉक्टर मेरा सर दर्द कर रहा है.
They say, just take this pill.
बोलते हैं ये गोली खा.
Or just have this injection.
ये इंजेक्शन ले लो.
But it doesn't work.
ये सर दर्द कम नहीं होता.
Why doesn't it work?
क्यों नहीं होता?
Because they haven't discovered what the disease is.
क्योंकि वो डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि बीमारी कौन सी है.
A good doctor finds out the disease.
अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसको बीमारी समझ में आती है.
He finds out where the disease comes from.
वो जानता है कि ये बीमारी आई कहाँ से.
He finds out what makes the disease work.
वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी बात है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है.
So Baba Sahib said, what is caste?
तो बाबा साहब कहते कि जाति क्या है?
You can't get rid of something unless you know what it is.
अगर कोई चीज क्या है ये आप नहीं जानते हैं तो आप उससे छुटकारा कैसे पाओगे?
If you want to get rid of a disease, if you want to get rid of the symptoms, you have to find out what the disease is.
अगर आपको बीमारी से मुक्त होना है तो वो बीमारी क्या है ये आपको जानना चाहिए.
So Baba Sahib said, well, what is caste?
तो बाबा साहब कहते कि जाति क्या है?
Well, brothers and sisters, what is caste?
तो भाई और बहनों जाति क्या है?
जाति क्या है? जाति क्या है?
जो जाति नहीं.
Huh? Your translator, you keep quiet. It's impossible to keep him quiet. So what is caste? Jati kya hai? It's well, how big is caste?
तो अभी जाति कितनी बड़ी है?
This big?
इतनी बड़ी है?
This big?
या इतनी बड़ी है?
This long?
इतनी चौड़ी है?
How much does caste weigh?
जाति का वजन कितना है?
Huh? Is it this heavy?
इतनी जाड़ी है?
Or this heavy?
या इतनी का वजनदार है?
Or this heavy?
या इतनी वजनदार है?
What color is caste?
जाति का रंग कौन सा है?
I don't know because I'm an Englishman. I don't understand caste.
मैं अंग्रेज आदमी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ.
I've never really worked this out. I've never understood caste.
और मुझे जाति कभी समझ में नहीं आई.
So how heavy is it?
कितनी वजनदार है?
And where is it?
और कहाँ रहती है?
You know, I want to find out about caste.
अभी मैं जात कहाँ है ढूंढने की कोशिश.
Oh, here's one Indian.
अभी ये भारतीय मिल गया उनको.
I'll get out my knife.
अभी वो चाकू निकाल दिया उन्होंने.
And I'll cut him open.
अब मुझे कट कर दिया.
Where do I cut to find caste?
अभी जाति खोजने के लिए इस आदमी को कहाँ काटू?
Huh? There?
सिर में काटू?
नहीं. There? नहीं. Well, you can't tell me. Why not?
तो अभी आप नहीं बता सको.
Yeah, the point is the caste doesn't really exist.
तो बात यह है कि जाति अस्तित्व में है ही नहीं.
It's not a thing.
ये कोई वस्तु नहीं है.
You know, Baba Sahib said it's not a brick wall.
बाबा साहब कहते कि ये कोई ईंटों की दीवार नहीं है.
It's not a line of barbed wire.
ये कोई कांटों वाले तार का कंपाउंड नहीं है.
So what is it?
तो ये क्या है?
What is it that divides one Indian from another?
एक भारतीय को दूसरे भारतीय से अलग करने वाली ये बात कौन सी है?
So Baba Sahib said, it's nothing.
बाबा साहब कहते कि जाति कुछ भी नहीं है.
He said it's a notion, it's an idea.
बाबा साहब कहते कि जाति ये मन की कल्पना है.
It just exists in the mind.
वो कहते कि वो मन में ही बनती है.
It has no real existence in the world.
दुनिया में इसका कोई सच्चा अस्तित्व नहीं है.
You know, if a Brahmin has a road accident, he needs blood.
अगर किसी ब्राह्मण का रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी खून लगता है.
But before he receives the blood, he doesn't say, "Wait a minute, what caste does that blood come from?"
तो खून मिलने के पहले वो ये नहीं पूछता, रुको रुको, ये कौन सी जाति वाले का खून है ये पहले बताओ.
Any blood will do.
कोई भी खून चलता है.
If somebody needs a transplant,
किसी को अगर अपना हृदय बदलना है.
Yes, if you okay, a heart transplant.
हृदय का ट्रांसप्लांट करना है.
It doesn't matter what caste the heart comes from.
अब किस जाति के आदमी का हृदय लाया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा.
What eye you have, it doesn't matter.
कौन
सर व्हाट
व्हाट आई यू गेट
अभी अगर आंख है तो कौन किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता
कास्ट इज जस्ट एन आइडिया दिस वाज बाबा साहब्स ग्रेट इनसाइट
और बाबा साहब की अंतर्दृष्टि थी कि जाति ये केवल मन की कल्पना है
इट्स जस्ट एन आइडिया
ये केवल कल्पना है
ऑफ कोर्स यू नो सम पीपल से वेल कास्ट कम्स फ्रॉम गॉड
अब कुछ लोग कहते हैं कि जाति ईश्वर से आई हुई है
वेल हु सॉ गॉड गिव इट
Sorry?
Who saw God give it?
अब किसने देखा कि ईश्वर ने दिया है करके?
Who's even seen God for a start?
अभी कौन ईश्वर को देखने वाला देख रहा है?
It's just an idea.
ये केवल कल्पना है.
It has no real existence.
तो इसका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है.
So Obama Saheb said, "What mind creates, mind can undo."
तो बाबा साहब कहते हैं कि मन जो कुछ बनाता है मन ही उसको नष्ट कर सकता है
If you read Annihilation of Caste, it's a very great work indeed.
बाबा साहब का आप लेख पढ़िए जाति भेद निर्मूलन उसमें बाबा साहब ये बात कहते हैं
This is what he said, what mind creates, mind can undo.
जो बाबा साहब उसमें कहते हैं कि मन जो निर्माण करता है उसको मन ही नष्ट कर सकता है
So what Baba Saheb saw was there had to be a great change in the mind of India.
तो बाबा साहब ने देखा है कि भारतीय के मन में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए
इफ there's to be real liberty, equality and fraternity, there needs to be a huge change in the mentality of India.
तो अगर भारत में समता स्वतंत्रता और बंधुता आनी है तो भारतीय के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए
So how to make this change?
तो ये परिवर्तन कैसा लाएंगे
This was Baba Saheb's great insight.
और ये बाबा साहब की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि थी
Well, he said you need two things.
तो वे कहते हैं कि दो बातों की आपको जरूरत है
In order to get cast out of the mind of India, you need to do two things.
भारत से जाति को अगर नष्ट करना है भारत के मन से जाति को नष्ट करना है तो आपको दो चीजें चाहिए
First of all, you have to leave behind the system within which caste comes.
तो सबसे पहले ऐसी व्यवस्था से आपको बाहर निकलना चाहिए जहां जाति मौजूद है
Caste belongs within a whole system of superstition and belief.
तो जाति जो है एक बहुत बड़ी अंधश्रद्धा और विश्वास की जो एक श्रृंखला है व्यवस्था है उसमें बनती है
It belongs within an old religion which has all these superstitions and beliefs.
और ये जो आपका पुराना धर्म है जिसमें ये सभी अंधश्रद्धा है और विश्वास है उसमें जाती है
And that religion is riddled with superstition, with fear, with insecurity.
और इस धर्म में अंधश्रद्धा है डर है
It has to be got rid of.
और इससे हमें पहले मुक्त होना जरूरी
One has to get rid of it from one's mind. One has to leave it behind.
हमारे मन से उसको निकालना चाहिए उसको पीछे छोड़ना चाहिए
As long as you keep it, caste is there in your mind.
जब तक आप अपने मन में इसको रखोगे तब तक जाति आपके मन में रहेगी
That means no liberty, equality and fraternity.
इसका मतलब समता स्वतंत्रता और बंधुता नहीं होगी
You have to get it out.
आपको इसको निकालना होगा
This is what Baba Saheb said.
और ये बाबा साहब कहते हैं
You take down the old gods.
आपके पुराने जो देवता है उसको निकालिए
You leave the old customs.
आपके पुराने जो रीति रिवाज है उनको बाजू में कर दीजिए
You abandon all the beliefs that support caste.
और जो जो भी विश्वास जाति का समर्थन करता है उसको बाजू में कर दो
You remember what Baba Saheb said in 1935.
1935 में बाबा साहब क्या कहते हैं आप जानते हो
I was born in that old religion.
वो कहते हैं कि उस पुराने धर्मों में मेरा जन्म हुआ था
That wasn't my choice.
वो कोई मेरे चुना नहीं था
Nobody asked me. That was where I was born.
अभी मेरा जन्म हो गया किसी ने पूछा नहीं कहां जन्म लेना है
But I will not die in that old religion.
लेकिन उस पुराने धर्म में मैं नहीं मरूंगा
And he kept his promise. He kept his vow.
और अपना इस वचन जो है उसको बाबा साहब ने पूरा
So you have to leave behind the old ideas.
और इसलिए पुरानी जो कल्पना है विचार है उसको आपको पीछे छोड़ना है
Caste is completely woven into them
aur in vicharon mein jati puri tarah se basi hui hai
it's a bit like taking a piece of cloth with a pattern on it
jaise ki koi ek kapde ka tukda lo jisme koi dhage lage hue hain
you can't say I want to get rid of just this little part of the pattern
aap nahi kahoge ki is kapde ka ye dhaga main nikal lunga
because it's all woven together
kyunki sabhi dhage us kapde mein ek sath lage hue hain
so you have to get rid of the whole thing
isliye pure kapde ko hi baaju mein kar dena bahut zaruri hai
but something has to take its place
lekin uske jagah par kuch to aana chahiye
as human beings we need to live by some ideals
एक मनुष्य करके जीने के लिए हमें आदर्श चाहिए.
We need to live by some ethical standards.
कोई हमारा नैतिक दर्जा होना चाहिए.
We have to believe that there's some future for us.
हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए कोई भविष्य है.
We have to believe there's some purpose to our life.
हमारे जीवन को कोई उद्देश्य है, इसका हमें विश्वास होना चाहिए.
We need something to guide our minds to liberty, equality and fraternity.
और हमारे कोई ऐसी शिक्षा चाहिए जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की तरफ हमको लेके जा सकती है.
So Baba Sahib, a very, very intelligent, very well-educated man.
तो बाबा साहब बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे.
He read his way through world religion.
सभी दुनिया के धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया.
He met many people from different religions.
अन्य सभी धर्मों के बहुत सारे लोगों को वो मिले.
We're told that he also received many offers of crores of rupees.
हम ये भी हमें पता है कि बाबा साहब को करोड़ों रुपए देने के लिए लोग तैयार भी थे.
If he just gone to this religion, he could have got so many crores.
अब ये धर्म को लेते हैं तो इतने करोड़ मिलेंगे.
If he gone to that religion, so many crores more.
दूसरे धर्म की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा करोड़ मिलेंगे.
But Baba Sahib was completely incorruptible.
लेकिन बाबा साहब को कोई भ्रष्ट नहीं कर पाया.
You think what other politician in India? Nobody's ever accused of corruption.
आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कौन सा भारत का राजनेता है जिसको भ्रष्टाचार किया है, ऐसा ये नहीं किया जा सकता.
Even Baba Sahib's enemies didn't accuse him of corruption.
लेकिन बाबा साहब के शत्रु भी बाबा साहब पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा.
So he wasn't influenced by money.
इसलिए बाबा साहब पैसों से प्रभावित नहीं होते थे.
He looked at world religion to see what was the best religion for India.
तो उन्होंने पूरे दुनिया के धर्मों को देखा और भारत के लिए कौन सा धर्म अच्छा है वो उन्होंने देखा.
What was the religion that would bring India back to its greatness?
ऐसा कौन सा धर्म है जो भारत को अपनी फिर से वो महानता दिला सकेगा.
So Baba Sahib looked at world religion with a testing eye.
और बाबा साहब ने दुनिया के धर्मों को देखा एक परीक्षात्मक नजर से.
He was looking for four things.
बाबा साहब चार बातें देखने की कोशिश कर रहे थे.
He wanted a religion that was reasonable.
बाबा साहब ऐसा धर्म चाहते थे कि जो उचित है.
He wanted a religion that did not conflict with science.
वो ऐसा धर्म चाहते थे कि जो विज्ञान से विरुद्ध में नहीं है.
I was born in a religion.
मैं एक धर्म में मेरा जन्म हुआ.
That religion teaches that that God made the world in six days.
अब मैं ऐसे धर्म में जन्म मेरा हुआ था, वो धर्म सिखाता है कि ईश्वर ने छह दिन में दुनिया बनाई.
Now it's a big work.
अभी तो बहुत बड़ा काम है.
So on the seventh day, God rested.
इसलिए सातवें दिन में ईश्वर ने आराम किया.
That's Sunday.
और वो है इतवार, संडे.
That's why the shop shut on Sunday.
और इसलिए आज भी शॉप जो है, दुकान जो है, संडे को बंद है.
Because God needed a rest.
क्योंकि ईश्वर को विश्रांति की जरूरत थी.
It's a big work creating the universe.
अभी दुनिया बनाना बहुत बड़ा काम.
So he needed a rest.
तो इसलिए उनको आराम की जरूरत थी.
Well, modern science proves that the world didn't come into existence in six days.
अभी ये आधुनिक विज्ञान हमें सिखाता है कि दुनिया छह दिन में नहीं बनी.
It took millions and millions of years.
ये उनको इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष लगे.
So when I was a child, I thought, well, religion teaches this, science teaches that.
जब मैं बच्चा था, ये सोचता था कि मेरा धर्म ये सिखाता है और विज्ञान ये सिखाता है.
And well, I couldn't go on believing that.
और इसलिए मैं विश्वास नहीं रख पाता था.
So Baba Sahib said, we need a religion that does not conflict with science.
इसलिए बाबा साहब कहते थे कि हमें ऐसा धर्म चाहिए जो विज्ञान के विरुद्ध नहीं है.
We need a religion that is reasonable.
जो ऐसा, मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो उचित ऐसा धर्म है.
So secondly, he wanted a religion that taught liberty, equality and fraternity.
वो ऐसा, दूसरी बात है कि वो ऐसा धर्म चाहते थे जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता सिखाए.
The old religion teaches inequality.
जो पुराना धर्म है वो असमानता सिखाता है.
It teaches graded inequality.
जो समाज की जो श्रेणीबद्ध विषमता वो सिखाता है.
We need a religion, Baba Sahib said, that supports liberty, equality and fraternity.
और बाबा साहब कहते हैं कि हमें ऐसा धर्म चाहिए जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता को मदद कर सकता.
Then Baba Sahib said, we need a religion that is compatible with Indian culture.
और तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा धर्म हमें चाहिए जो भारत की संस्कृति में लागू हो सके.
There's so much good in India.
भारत में बहुत कुछ अच्छा है.
That's why I keep coming back to India.
और इसीलिए मैं भारत में आते रहता हूँ.
That's why I love India.
और इसीलिए मैं भारत पर प्यार करता हूँ.
That's why I'm half Indian.
और इसलिए मैं आधा भारतीय हो गया हूँ.
There's so much that's wonderful in India.
और इसलिए बहुत कुछ भारत में अच्छी बातें हैं.
And well, we don't want to lose that.
और ये हम नहीं छोड़ना चाहते.
Don't become like the West.
अभी पश्चिम के जैसा आपत बनी.
There's so much wrong in the West.
पश्चिमी दुनिया में बहुत कुछ गलत बातें.
So changing India doesn't mean but just becoming like America or England.
इसलिए भारत को बदलना इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसा होना ऐसी बात नहीं है.
Baba Sahib said we want a religion that brings out the best in India.
बाबा साहब कहते थे कि उनको ऐसा धर्म चाहिए जो दुनिया में भारत के लिए सबसे अच्छा कुछ दे सके.
Then Baba Sahib said we need a religion that trains the mind for freedom.
और बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा धर्म हमें चाहिए जो स्वतंत्रता के लिए मन को प्रशिक्षित कर सके.
बाबा साहब said freedom doesn't just come to us.
बाबा साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे ही अपने आप नहीं आती.
Freedom doesn't come from outside us.
बाहर से स्वतंत्रता नहीं आती.
We have to develop the mind of freedom.
हमें स्वतंत्रता का मन उसका विकास करना होता है.
Well, look what happened to India.
तो अभी भारत की बात देखिए.
You have this wonderful constitution.
इतनी अच्छी सुंदर संविधान हमारी है.
This constitution of full liberty, equality and fraternity.
और संविधान में पूरी तरह से समता, स्वतंत्रता और बंधुता है.
But the mind is not ready for freedom.
लेकिन मन उस स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है.
It's a bit like an animal in a cage.
जैसे कि किसी पिंजरे में किसी प्राणी को रखा हुआ.
I've just been in the jungle in Vidarbha.
विदर्भ के एक जंगल में मैं अभी जाकर आया.
And in that jungle there are some tigers.
उस जंगल में कोई शेर है.
And once I went to see one of those tigers.
और एक बार वो शेर देखने में गया था.
It was in a compound.
वो उस कंपाउंड में बंधा था.
A beautiful animal.
बहुत ही सुंदर प्राणी.
So strong.
बहुत ही मजबूत.
And so beautiful, and lovely colors in its fur.
वो बहुत ही सुंदर ऐसा उसकी चमड़ी का रंग था.
But that animal was just in a cage.
लेकिन वो प्राणी किसी पिंजरे में था.
And it had got used to the cage.
अभी उसको आदत हो गई थी पिंजरे में रहने की.
So one day the keepers they took it out and they said, "Go on, you're free."
अभी उन्होंने वहाँ जो रखवाले थे उन्होंने उसको पिंजरे से बाहर निकाला और छोड़ दिया. बोले जाओ.
Go on, go and chase the deer.
जाओ और कुछ हरिन के पीछे भागो.
But the tiger just turned round and went back inside the cage.
लेकिन बाहर से शेर वापस आ गया पिंजरे में.
Because it was used to it.
क्योंकि आदत हो गई उसको पिंजरे की.
I remember when I arrived in India one time, I saw a very interesting article, a very interesting piece of news in the paper.
मुझे याद है काफी साल पहले की बात है. मैं भारत में नया नया आया था और एक बहुत ही दिलचस्प ऐसी खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी.
The police arrested a man.
पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था.
What did they arrest him for?
अभी उस पुलिस ने आदमी को किस लिए गिरफ्तार किया था?
They arrested him for breaking into a prison.
क्योंकि वो जेल तोड़ के जेल के अंदर गया था.
He'd been a prisoner.
क्योंकि वो जेल में ही उसको सजा हो गई थी.
They let him go.
अब जेल से छुट्टी हो गई थी उसको.
But it was not. He didn't find it easy outside the prison.
अभी जेल के बाहर उसको जीना अच्छा ही नहीं लगा.
So he wanted to go back into the prison.
इसलिए वो जेल में वापस जाना चाहता था.
So he climbed over the wall and tried to break back into the prison.
और इसलिए वो दीवार चढ़ के गया और फिर जेल के अंदर कूद गया.
Well, brothers and sisters, India is a bit like that.
तो भाई और बहनों भारत इसी तरह का है.
You got rid of the British jailer.
अभी ब्रिटिश जेलर है उनको आपने भगा दिया.
But India is still not free.
लेकिन भारत अभी तक जो है मुक्त नहीं है.
Because the mind is not trained for freedom.
क्योंकि मन को स्वतंत्रता का प्रशिक्षण नहीं मिला है.
So Baba said we need a religion that trains the mind for freedom.
इसलिए बाबा साहब कहते हैं हमें ऐसा धर्म चाहिए जो हमारे मन को स्वतंत्रता का प्रशिक्षण दे सके.
So Baba Sahib looked at world religion.
इसलिए बाबा साहब ने दुनिया के धर्म देखे.
He saw there was only one religion that fitted these criteria.
और इन निकषों को जो पूरा कर सकता है ऐसा एक ही धर्म है जो बाबा साहब ने देखा.
And that was the Buddha Dhamma.
और वो था बुद्ध धर्म.
The Buddha Dhamma is reasonable.
बुद्ध धर्म जो है वो तर्क पर आधारित है.
इट्स इन लाइन विद साइंस.
वो विज्ञान से मेल खाता है.
बुद्ध धर्म सेज टेस्ट फॉर योरसेल्फ.
बुद्ध धर्म कहता है कि खुद आकर देखो.
द बुद्धा सेड टू हिज डिसिपल्स डोंट जस्ट बिलीव मी.
बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि केवल मुझ पर ही विश्वास मत रखो.
ही सेड टेस्ट माय वर्ड्स.
वो कहते
जस्ट लाइक अ गोल्डस्मिथ टेस्ट गोल्ड.
वो कहते हैं कि जैसे सुनार सोने की परीक्षा करता है उसी तरह आप मेरे शब्दों की परीक्षा करो.
यू नो इफ यू गो यू टेक सम गोल्ड एंड यू टेक इट टू अ गोल्डस्मिथ.
आप देखते हैं कि सोना आप सुनार के पास लेके जाते हैं.
एंड यू से टू हिम प्लीज बाय दिस गोल्ड.
आप बोलते हैं कि ये खरीदो.
व्हाट डज ही डू.
वो क्या करता है.
ही टेस्ट्स इट.
वो पहले उसको जांचता है.
I don't know how he does it, but he has ways of checking that it's really gold.
तो आप वो कैसा करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका अपना ढंग होता है कि वो सोना सही है कि नहीं वो देखना.
He won't just take it from you and give you whatever you ask.
वो केवल सोना लेके आपको पैसे नहीं देगा.
So the Buddha said, do that with my teaching.
तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा ही मेरी शिक्षा के साथ करो.
See whether it works.
देखो आपके लिए ये लागू होता है या नहीं.
See whether it's reasonable.
देखो ये सही में तर्क पर आधारित है या नहीं.
See whether it makes sense.
अब इसका सही में अर्थ लगता है कि नहीं उसको देखो.
This is quite wonderful.
और ये बहुत सुंदर बात.
You know, in India there's so many gurus.
भारत में बहुत सारे गुरु आप देखते हैं.
And what the gurus say?
गुरु क्या कहते हैं?
They say, just believe me, just serve me.
गुरु कहते हैं कि मेरे पर विश्वास रखो और मेरी सेवा करो.
And I will save you.
मैं आपको बचा लूंगा.
I will take you to moksha.
मैं आपको मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा.
But the Buddha didn't say that.
बुद्ध ऐसा नहीं कहते.
He said, it's not me that's important, it's my Dhamma.
वो कहते कि मैं महत्व का नहीं हूँ, मेरी शिक्षा महत्व की है.
Follow my Dhamma, see for yourself whether it works.
मेरे धम्म का आचरण करो और खुद जांचो कि आपके लिए उपयोग का है या नहीं.
So yes, the Buddha Dhamma is in line with reason.
इसलिए बुद्ध धम्म तर्क पर आधारित है.
Then the Buddha Dhamma is in line with liberty, equality and fraternity.
बुद्ध धर्म उसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुता के साथ मेल खाता है.
There's so much to say here.
अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है.
As Bante said at the beginning, Baba Sahib said, liberty, equality and fraternity come from the Buddha Dhamma.
तो जैसे बंते जी ने भी शुरुआत में कहा है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता बुद्ध धम्म से आती है.
But you can just see one thing.
लेकिन आप एक बात देख सकते हैं.
2500 years ago, the Buddha completely rejected caste.
2500 साल पहले बुद्ध ने जाति को पूरी तरह से नकारा था.
He just ridiculed caste.
जाति का उन्होंने मजाक किया था.
He ridiculed those who had pretensions of caste.
और जो जाति का एक तरह से ढोंग करते हैं उनको भी उन्होंने नकार दिया था.
He refused to observe caste.
और जाति का पालन करने के लिए उन्होंने नकार दिया.
He deliberately created his order so that caste had no hold on it.
और उन्होंने जानबूझकर अपना संघ बनाया ताकि उसमें जाति ना रहे.
Then thirdly, the Buddha Dhamma is in line with the best of Indian culture.
और तीसरी बात है कि बुद्ध धम्म भारतीय संस्कृति के साथ मेल खाता है.
India at its greatest was Buddhist.
भारत जब सबसे अच्छा काल जो है भारत का बुद्ध काल.
So much today that is good in Indian culture comes from the Buddha Dhamma.
आज भी भारत में जो कुछ भी अच्छा है वो बुद्ध धम्म से आया हुआ है.
Just as the Buddha Dhamma is underneath the soil of Karnataka, it's in Carnatic culture too.
तो जैसे जमीन के अंदर बुद्ध धम्म है कर्नाटक में, वैसे कर्नाटक की संस्कृति में भी है.
What is best in Indian culture, much of it comes from the Buddha Dhamma.
और भारत में जो भी अच्छा है वो बुद्ध धम्म से आया हुआ है.
So the Buddha Dhamma is completely supportive of Indian culture at its best.
और इसलिए बुद्ध धम्म भारत के संस्कृति को पूरी तरह से एक अच्छा बनाने वाला है.
And then fourthly, the Buddha Dhamma provides training the mind for freedom.
और तीसरी बात, चौथी बात है कि बुद्ध धम्म मन को प्रशिक्षित करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए मदद करता है.
The Buddha Dhamma provides a path of training.
बुद्ध धम्म प्रशिक्षण के लिए मार्ग दिखाता है.
If you follow that path, your mind will become free.
अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपका मन स्वतंत्र होगा.
You'll begin to experience real equality with others.
दूसरों के साथ एक सच्ची समानता आप महसूस करोगे.
You'll feel fraternity with others.
दूसरों के साथ एक बंधुत्व आप महसूस करोगे.
And during this shibir, we'll be exploring that path.
और इस शिविर के दरमियान इसी मार्ग का हम अभ्यास करने वाले.
We'll be exploring that path in terms of dana, shila, समाधि, प्रज्ञा.
और इस इन दिनों में हम दान, शील, समाधि और प्रज्ञा इनका अभ्यास करेंगे.
I'm not going to say much more about those now. I'm going to be speaking about them over the next few days.
तो मैं अभी बहुत ज़रा इसमें नहीं बताऊंगा. मैं आने वाले दिनों में हर एक के बारे में प्रवचन दूंगा.
So this Dhamma Kranti retreat is changing our minds.
तो ये धम्म क्रांति शिविर जो है हमारे मन को बदलने वाला है.
If we want to change India, we have to change one Indian.
अगर भारत को हमें बदलना है तो एक भारतीय को हमें बदलना चाहिए.
Who is that Indian?
अब वो भारतीय कौन है?
Your wife?
आपकी पत्नी है.
Your husband?
आपके पति है.
Father?
आपके पिता है.
No, it's you. It's you that you have to change first. You can't change anything else until you change yourself. So we're going to be training the mind for freedom. We're going to be training the mind for liberty, equality and fraternity. We're going to experience also a new society in miniature.
और एक छोटे रूप में एक नव समाज का अनुभव हम लोग लेंगे.
During these few days, this will be a casteless society.
आने वाले इन दिनों में ये एक जाति विहीन समाज होगा.
We will all be meeting just as brothers and sisters in the Dhamma.
हम सभी लोग भाई और बहन करके धम्म के भाई और बहन करके यहाँ मिलेंगे.
We'll experience fraternity.
हम बंधुत्व का अनुभव करेंगे.
Here there are people from different castes and communities.
तो यहाँ पर अलग-अलग जातियों के से लोग आए हुए हैं.
I don't know what they are. I don't want to know what they are.
अभी कौन-कौन सी जातियों से आप लोग आए हैं मैं नहीं जानना चाहता हूँ.
But we know there are people from different communities.
लेकिन मैं जानता हूँ कि अलग-अलग समाज से लोग यहाँ पर आए हैं.
But we meet just as brothers and sisters.
लेकिन हम यहाँ भाई और बहन करके इकट्ठा आते हैं.
There are people from different regions.
और अलग-अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं.
Of course there are people from Karnataka, which is wonderful.
और कर्नाटक से भी बहुत सारे लोग हैं ये बहुत अच्छी बात.
There are many people from Maharashtra.
Maharashtra se bahut log aaye hain.
There are at least two people from Bihar.
Kam se kam do log Bihar se aaye hain.
They come from Buddh Gaya, from the Buddha's own land.
Buddha ki bhumi jo hai Buddh Gaya wahan se wo aaye hain.
There are people from Rajasthan, from Andhra Pradesh, like Bhante here.
Rajasthan hai, Andhra Pradesh se log aaye jaise Bhante ji bhi Andhra
from
Pradesh.
From UP, like Bhante here.
Ye Bhante ji UP ke hain.
From Tamil Nadu.
कुछ लोग यूपी से आए, कुछ लोग तमिलनाडु से आए हैं.
Maybe other states too.
और भी अन्य राज्यों से आए हुए होंगे.
It doesn't matter what state you come from.
किस राज्य से आप आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
We're just brothers and sisters in the Buddha Dhamma.
आप सभी लोग जो है बुद्ध धम्म के धम्म और भाई और बहन हैं.
We're from different nations.
हम अलग अलग राष्ट्रों से आए हैं.
There are a lot of Indians.
यहाँ बहुत सारे भारतीय हैं.
And there are two Englishmen.
और दो अंग्रेज लोग हैं.
So we're not here as Englishmen.
हम कोई यहाँ अंग्रेज करके नहीं आए हैं.
We're just your brothers.
हम आपके भाई हैं.
It doesn't matter where we come from.
हम कहाँ से आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
You're our sisters and our brothers.
आप हमारे बहनें और भाई हैं.
So we're going to experience a casteless society.
तो हम ये जाति विहीन समाज का अनुभव लेने वाले हैं.
Yes, we've got men and women.
हम महिला और पुरुष यहाँ पर हैं.
But no inequality between men and women.
लेकिन यहाँ स्त्री और पुरुषों के बीच में कोई असमानता नहीं होगी.
I know the tradition in India.
मैं भारत की परंपरा जानता हूँ.
Men there, women.
पुरुष ऊपर महिलाएं नीचे.
But it's not like that here.
यहाँ पर ऐसी बात नहीं होगी.
Men and women are equal.
स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं.
We're just human beings all together.
तो हम सभी मनुष्य हैं साथ में.
And that's a wonderful thing to experience.
और ये बहुत ही सुंदर ऐसी बात है अनुभव करना.
If we experience that sort of equality, we feel so free, so happy.
तो इस तरह की समानता अगर हम अनुभव करते हैं तो हम बहुत मुक्त अनुभव करते हैं, आनंद होता है.
So I know from my own experience that during these few days we'll experience more and more of this casteless society.
तो मुझे आशा है कि हम आने वाले दिनों में और ज्यादा रूप में ये जातिविहीन समाज का अनुभव लेंगे.
We'll experience more and more freedom in our minds.
हमारे मन में हम और स्वतंत्रता का अनुभव लेंगे.
And we will be following Baba Saheb's vision.
और हम बाबा साहब की दृष्टि का उनके अनुसार आगे बढ़ेंगे.
We'll be carrying out Baba Saheb's greatest gift to India.
और बाबा साहब ने जो भारत के लिए सबसे बड़ी भेंट दी है उसको हम लोगों तक ले जाएंगे.
Baba Saheb did so much for India.
भारत के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है.
But the greatest thing he did was come to the Buddha Dhamma.
लेकिन सबसे महान बात बाबा साहब ने की है वो है बुद्ध धम्म की तरफ आना.
As his sons and daughters, it's our duty to follow him.
हमारे उनके पुत्र और पुत्री करके हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब के चरणों पर हम आगे बढ़े.
And we can bring the rest of India with us.
और हम पूरे भारत को अपने साथ मिले जाए.
And here we are in Karnataka.
और यहाँ हम कर्नाटक में हैं.
And I hope that we'll give a big boost to the Buddha Dhamma here.
और यहाँ के बुद्ध धम्म को मुझे आशा है कि हम बहुत बड़ा एक आगे बढ़ाएंगे.
I hope that we'll help our brothers and sisters in Karnataka to bring the Buddha Dhamma back.
हम हमारे कर्नाटक के भाई और बहनों को सहायता करेंगे ताकि बुद्ध धम्म यहाँ वापस आए.
So brothers and sisters, you've come a long way, some of you.
तो भाइयों बहनों बहुत दूर दूर से आप आए हुए हैं.
Your stomachs are empty.
आपके पेट खाली है.
You've had food for the mind, food for the heart.
आपके मन के लिए हृदय के लिए आपको खाना मिला.
But you need food for the belly.
तो आपके पेट के लिए भी खाना चाहिए.
But me too, I need food for my belly.
हाँ, उनको भी खाना चाहिए.
Kumarajiv, yes too. So, I'm not going to keep you any longer.
तो अभी मैं और ज्यादा आपको रुकाऊंगा नहीं.
Over the next few days, we'll gradually lead you deeper and deeper into the Buddha Dhamma.
हम आने वाले दिनों में और बुद्ध धम्म की गहराई में जाएंगे.
We'll start tomorrow morning at 6 o'clock.
कल सुबह 6 बजे हम शुरुआत करेंगे.
Up at the Vihara.
विहार में हम शुरुआत करेंगे.
And we will teach you basic meditation.
हम आपको एक मूलभूत ध्यान साधना सिखाएंगे.
Meditation is the revolution of the mind.
ध्यान जो है मन की क्रांति है.
We're going to revolutionize our minds.
हम अपने मन में क्रांति करेंगे.
First of all, we're going to revolutionize our minds by giving us strength.
तो अपने अंदर से शक्ति निर्माण करके हम मन की क्रांति करेंगे.
We can't change India unless we've got strength.
जब तक हमारे अंदर ताकत नहीं तब तक हम भारत को नहीं बदल सकते.
So our first meditation will give us that strength to change India.
तो सबसे पहला हमारा ध्यान है वो हमें ताकत देगा.
It will be an exercise that gives us concentration, focus and direction.
तो ये ऐसी साधना होती है जहां हमें शक्ति मिलती है, धैर्य मिलता है और एकाग्रता मिलती है.
So please get a good night's sleep.
तो कृपया अच्छी नींद लीजिए.
Have good dreams.
अच्छे सपने देखिए.
What a wonderful place to dream.
बहुत सुंदर जगह है सपना देखने के लिए.
This is like a dream, this place.
तो ये जगह ही एक सपने जैसी है.
So have a good night's dreaming.
तो अच्छी नींद सपने देखिए नींद में.
And please come to the Vihara at 6 o'clock, ready for meditation.
और 6 बजे विहार में आइए ध्यान साधना के लिए तैयार.
And we will begin this revolution.
तो इस क्रांति की हम शुरुआत करेंगे.
And we'll begin to experience the Dhamma Kranti, the casteless society together.
तो हम साथ में मिलकर एक जातिविहीन जो समाज है उसका अनुभव करेंगे.
नमो बुद्धाय, जय भीम.